ओम शांति। आज हम सबके बीच हमारी प्यारी गीता दीदी सत्य गीता ज्ञानदाता के सत्य गीता ज्ञान को समझ करके अपनी अल्प आयु में, बहुत ही छोटी आयु में, जैसे हमारी दादियां बहुत बचपन में आए, वैसे ही दीदी भी बहुत ही छोटी आयु में ही इस बात को पहचान करके उस गीता ज्ञानदाता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचा करके सच्चा राजयोग का अभ्यास कराने की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर किया। आप पढ़ाई जब पढ़ रही थी, पढ़ाई में भी स्टेट लेवल में टॉपर थी। जब अपने जीवन को इस कार्य में मात्र 14 वर्ष की आयु में, उस समय अभी और ही खेलने कूदने के दिन होते हैं, लेकिन आपने बाबा को पहचान कर अपने जीवन को अर्पण कर इस सेवा में लगी और सबसे पहले राजयोग शिविर कराने का श्रेय आपको जाता है। देश विदेश में आप सेवाएं देती हैं और गुजरात की सेवाएं किया, ज्ञान सरोवर की शुरू से लेकर के जिम्मेवारी संभाली, अभी शांतिवन बेहद घर में आप सेवाएं कर रही है। बेहद सेवाओं में दिन रात लगी रहती, स्वास्थ्य की भी परवाह न करें, ऐसी विधि को आज हम सुनेंगे, अंतिम पुरुषार्थ की विधि। आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अंतिम समय का पुरुषार्थ, अभी संगम युग चल रहा है, संगम माना ही कल्प का अंत और दूसरे कल्प की आदि। ये युग का अंत नहीं है, लेकिन कल्प कल्प का अंत है। जन्म जन्मांतर की बात नहीं है, ये कल्प कल्पांतर का समय है। जिसमें बाबा कहते हैं कि कल्प के अंत में हमें क्या करना है, कल्प के अंत में हम बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कि तुमको यही चिंता लगी हुई है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। पतित से पावन कैसे बने, क्योंकि कलयुग के अंत में हम शूद्र बन गए। अब रिवर्स गाड़ी जा रही है। जब पवित्रता का पालन करते हैं तो हम तमो प्रधान से रजो प्रधान बनते हैं, माना शूद्र से हम वैश्य बनते हैं। वैश्य स्थिति की दो कमजोरियां हैं, एक तो हमें हम जानते हैं दुनिया में जो वैश्य है, एक तो लोभ बहुत होता है और देह संबंधों में मोह ज्यादा होता है। तो जब हम लोभ पर और मोह पर विजय प्राप्त करते हैं तो हम सतो बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं। और क्षत्रिय वर्ण की दो कमजोरियां होती हैं, एक तो क्रोध और अहंकार। जब इस क्रोध और अहंकार पर जीत पाते हैं तो हम सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, पवित्र योगी बनते हैं और अंत तक इस सच्चे ब्राह्मणत्व में चलते रहते हैं तो हम देवता पद प्राप्त करते हैं। तब हमारी स्थिति को हम कहते हैं सतो प्रधान बनते हैं। तो अभी हम कलयुग से सतयुग जा रहे हैं। अपने आप को देखना है, खास आप सभी पांडव भवन में आए हैं। ये बाबा मम्मा की तपोभूमि है, दादियों की तपोभूमि है, वरदान भूमि है, इस तपस्या की भूमि में हमें अपने आप को देखना है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कब तक पहुंचे। सतो सामान्य त्रेता युगी स्थिति की ये निशानी है कि हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी। कोई भी कर्मेंद्रिय में चंचलता नहीं रहेगी। तो ये चेक करना है कि हम कहां तक सतो प्रधान बने हैं। बाबा ने कई चिन्ह बताए हैं। कि हम माया जीत कहां तक बने। हमारा पहला पुरुषार्थ ये है माया जीत बनना, और माया जीत बनने का काम महाशत्रु पर जीत पाते हैं। माया जीत के बाद विकर्मा जीत बनते हैं। कोई भी विकर्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक माया के वश होते हैं माना ही विकर्मा विकर्म के वश होते रहते। तो माया जीत बनते हैं, विकर्मा जीत बनते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद काम वासना के वश होते रहते हैं तो हम आत्मभिमानी नहीं बन सकते। हम पहला पाठ ही नहीं पढ़ सकते। आत्मभिमानी बनने की शिक्षा रोज बाबा देते हैं। फिर अगर ब्राह्मण बनने के बाद क्रोध के वशीभूत होते रहते हैं तो हम अपने शांति स्वधर्म में स्थित नहीं हो सकते। क्रोध का मोटा रूप हम जीत लेते हैं पर रोब आवेश रुआब द्वेष ईर्ष्या घृणा तिरस्कार ये क्रोध के छोटे रूप है। अगर हम इनके वश होते रहते हैं तो हम क्रोध जीत नहीं बन सकते। अगर ब्राह्मण बनकर हम लोभ के वश होते हैं तो हम अपना भाग्य नहीं बना सकते, क्योंकि जो हमारे पास है स्थूल जमीन है स्थूल धन है मकान है जायदाद है उसका हम सेवा में उपयोग नहीं कर सकते। हम अपना तन मन धन अगर सेवा में उपयोग करते हैं तो हम अपना भाग्य बना सकते। और ब्राह्मण बनने के बाद अगर मोह में वश रहते मोह के मोहताज होते रहते हैं तो हम अपनी बुद्धि बाबा तक नहीं ले जा सकते। मोह के वशीभूत हम रहते हैं तो हम अपनी बुद्धि बाबा तक नहीं ले जा सकते। मोह को जाल कहते हैं। जब हम मोह के वश रहते हैं, देह संबंधों में फंसे रहते हैं, तो हम भगवान का प्यार नहीं पा सकते, क्योंकि देहधारियों में फंसे रहते हैं। अगर क्रोध करते हैं तो हम ब्राह्मणों का प्यार नहीं पा सकते। अगर हम सेवा में क्रोध करते हैं तो ब्राह्मण भाई बहनी कहेंगे कि हम इसके साथ सेवा नहीं करेंगे। ये गुस्सा करते रहते हैं, हम अपने आप सेवा कर लेंगे, पर हम इस भाई के साथ सेवा नहीं करेंगे। तो क्रोध से ब्राह्मणों का प्यार नहीं पा सकते हैं, तो लोभ से, मोह से ईश्वर का प्यार नहीं पा सकते। अगर हमें अहंकार आता है, आज भी बाबा ने कहा ना कि बाप समान अपना स्वभाव इसी बनाओ, घमंड में नहीं रहो, ज्ञान युक्त बुद्धि रखो, अभिमान में नहीं आओ। जब ज्ञान नहीं था तो अपने रूप का, पद प्रतिष्ठा का, धन का अभिमान रहता था। बाबा के बन गए, अब वो पद प्रतिष्ठा, रूप, बुद्धि, ज्ञान का अभिमान नहीं रहता है। पर जो विशेषताएं हैं, प्रभु की देन है, वो उसका अभिमान आने लगता है, मैंपन आने लगता है, मेरापन आने लगता है। तो बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, अब हमें मैंपन, मेरापन का अभिमान नहीं आना चाहिए। सेवा का अभिमान आता है तो हमें सेवा का भी अभिमान न आवे। तो अहंकार हमें गिराता है, हमारी चढ़ती कला बंद हो जाती है, हमें गिरने का एहसास होने लगता। तो अब अगर चढ़ती कला, उड़ती कला में जाना है तो हमें कोई अभिमान न रहे। बाबा ने हमें बताया है कि अंत समय में एक तो बीमारी का पेपर आता है, जो जन्म जन्मांतर पाप कर्म किए हैं तो वो कर्म भोग के रूप में आता है। दूसरा पेपर मित्र संबंधियों का पेपर आता है। मित्र संबंधी की बीमारी भी आती रहती है। हमें प्रकृति के तरफ से पेपर आता है। अंतिम पेपर ये है, प्रकृति के तरफ से पेपर आता है। और चौथा गवर्नमेंट के तरफ से पेपर आता है। गवर्नमेंट टैक्स रेट बदलती है। अभी भी कितना पेपर आया, तो ये सब पेपर हमारे पर आएगा। पर जितना हम कंबाइंड स्वरूप रहेंगे, बाबा से जुड़े रहेंगे, तो कोई वार नहीं कर सकेगा। बाबा ने कहा था कि यहां तक बाढ़ आएगी, पानी पहुंच जाएगा, पर अगर आप प्रकृति पति से कंबाइंड रहेंगे तो वो वहां आके अटक जाएगा, आपको बाढ़ का पानी वार नहीं करेगा। उसके लिए अभ्यास चाहिए कंबाइंड स्वरूप रहने का। मैं आत्मा बाबा से कंबाइंड, मैं शिव शक्ति शिव से कंबाइंड हूं। जितना ये अभ्यास करेंगे उतना हम बाबा के साथ जुड़े रहेंगे और प्रकृति के पेपर से बच जाएंगे। और एक पेपर भटकती आत्माओं का पेपर होगा। हम तो योगी हैं, भटकती आत्माओं का भी हमें उद्धार करना है, तो ये भूतों का पेपर आएगा। पर हमें भूत से घबराना नहीं है, बाबा की याद में रहना है। जितना बाबा को याद करके उन आत्माओं को दृष्टि देंगे, उन आत्माओं को समझेंगे, तो हमारे आगे वो पेपर नहीं आएगा। ऐसी भटकती आत्माओं का अनुभव होगा। बहुत शुरू में जब मैं सेंटर में आई 72 में, मैं सेंटर में रहने आ गई। तो 73 में दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ा मेला किया था। जगदीश भाई जी ने ये मेला रचा था और पूरे इंडिया से मदद आई थी, भाइयों की, पैसे की, कपड़ों की, बर्तन की, हर मदद सर्व के सहयोग से वो मेला हुआ था। 73 में तो इतने भाई बहने सेंटर थे नहीं, तो चारों तरफ से मदद मांगी थी। हम उस समय सूरत में थे, सब बहने जा गई थी, हमारी लता दीदी भी गई थी, सुरेखा बहन भी गई थी, और उस समय मैं और एक गांव की बहन हमारे साथ थी। उस गांव की बहन एक बार बस में मेरे साथ थी, तो बस में हम लोगों ने ज्ञान दिया, उस बहन ने भी ज्ञान दिया। जिसको ज्ञान दिया वो अपना गांव आया, वहां उतर गई और हम सूरत आए। उनको ज्ञान इतना अच्छा लगा, उसको पवित्र जीवन जीने की इच्छा थी, परंतु उनके पिताजी तो ज्ञानी थे नहीं, उसकी शादी कराई और शादी भी एक विदेश में रहने वाले डॉक्टर से कराई। अब वो डॉक्टर विदेश में रहता था, पढ़ा लिखा था, तो वो बहुत विषयी था, उसको विकार ही करना था। तो वो बहन बहुत बाबा को याद करती थी, उसको जब उनके साथ पतित बनता था उसको बहुत तबीयत खराब होती गई, क्योंकि उसको तो यही लगन थी कि मुझे पवित्र रहना, और उस लगन में उसने पतित बनते शरीर छोड़ा। उसकी लगन अच्छी थी तो वो आत्मा शरीर छोड़ के, क्योंकि उसकी तीव्र लगन थी इसलिए वो बहन के तन में आए। बाकी तो सब गए थे, वो और मैं थी, और रोज यहां से भाइयों को, बहनों को, कुमारियों को बर्तन भेजो, ये भेजो, हर ग्रुप के साथ हम भेजते थे। तो एक दिन हम दोपहर में सोए थे तो उस बहन के तन में वो प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगे। वो अपना भयानक रूप बताती थी, पर वो बहन मजबूत बनके प्रवेश होने नहीं दिया। उसने मुझे बताया कि कोई घुंघरू बजाता है और वो बहन मेरे में प्रवेश होने का प्रयास करती। आखिर वो प्रवेश कर ही गई। जब गुरुवार था, हमने क्लास में सभी भाई बहनों को कहा कि सभी अपना चार्ट लिख के देवे। उस समय गुरुवार के दिन सबको चार्ट लिखाते थे, तो सबने अपना चार्ट लिख के दिया। ये भी क्लास में बैठी थी, पर मुझे ही पता था कि इसमें आत्मा आई हुई है। क्लास के बाद उसने पूछा कि आज आपने पूछा ना कि चार्ट लिख के दो, तो मैं अपने जीवन का पूरा चार्ट आपको बताती हूँ। उसने ये सारी कहानी मुझे बताई और फिर रोज उसको एक लेसन में कराती थी। उस प्रकार से उसका 7 दिन पूरा हुआ। अब मैंने कहा 7 दिन पूरा हुआ, अब आप जाओ। तो दोपहर में जब सोए थे तब वो मुख से आवाज करने लगे, कुछ बातचीत करने लगे। तो मैंने कहा कि अभी आप सो जाओ, क्यों बातें कर रहे हो। तो उसने कहा कि यहाँ बहुत भटकती आत्माएं हैं, मैं उसको ज्ञान दे रही हूं। उस समय हम सेंटर के भी पैसे का हिसाब रखते थे, नोटबुक में क्या आया क्या गया वो सब कुछ लिखते थे। 5 रुपए का कुछ लिया वो भी लिखते थे। हमने उसको बताया कि ये चार्ट लिखते हैं हम। तो जब उठे तब बिस्तर ठीक करते हैं ना, तो हम तकिया ठीक करके रख रहे थे, तो उसके नीचे से पैसे निकले। तो मैंने उनसे पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए, हम तो हर चीज लिखते हैं। तो उसने बताया कि मैं इतना दिन यज्ञ में रही, आपकी पालना ली, तो मुझे यज्ञ में करना चाहिए ना। तो मैं अपने भाई के तन में प्रवेश हुई और भाई के द्वारा पिताजी से पैसे ले आई। जैसे सत्य साई बाबा कुछ निकाल के देते थे ना, तो वो कहीं भी किसके तन में जाके लेके आते हैं, वहां वो चीज कम हो जाती और यहां वो चीज आ जाती। तो इस प्रकार इस बहन ने भी भाई के तन में प्रवेश करके उनसे पैसे ले आए। जब मैंने पूछा कि ये पैसे कहाँ से लाई, तो उसने ये पूछा बताया कि कैसे मैं भाई के तन में प्रवेश हुई और वहां से पैसे ले आए। फिर उसको मैंने सिखाया कि अब आप जन्म ले लो और उस शहर में सेंटर होगा, वो सेंटर में जाना और वहां कोर्स करके दीदी को बताना कि मुझे अब समर्पित होना है। तो ये एक ज्ञानी आत्मा का है। ऐसे दूसरा भी अनुभव है। जब मैं भावनगर में थी तो एक कुमारी आती थी और उनकी एक फ्रेंड भी थी। इस कुमारी के कारण वो कुमारी भी आती थी, पर फिर उसको किसी से प्यार हो गया और पिताजी को कैसे कहें, घर में कैसे बताएं, वो बता न सकी और उसने सुसाइड कर लिया। फिर वो कुमारी की आत्मा, जब ये कुमारी सेंटर पर आती थी और जैसे ही योग में बैठती थी, उसका मन शांत होता था तो उसमें प्रवेश हो जाती थी। अब दोनों आपस में मिल तो सकते नहीं हैं, दोनों रोते रहते थे। तो एक दिन जब मैं बाहर गई, मेरे पीछे वो योग के टाइम प्रवेश हो गई। तो जब मैं आई तो बहनों ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर मैंने कहा जब मैं होंगी तब आएंगी तो मैं उनसे बात करूंगी। तो जब मेरे होते वो आई तो मैंने उनको बात किया कि तुम फ्रेंड्स थी पर आपने सुसाइड कर लिया, अब आप आती है दोनों तो मिल नहीं सकते हैं, तो इससे तो अच्छा ये है कि अब तुम जन्म ले लो और ज्ञान में चलो। उसके बाद वो नहीं आई। ये भी ज्ञानी आत्मा थी। तो मुझे ऐसे बहुत अनुभव है ये भूतों के प्रवेश का। पर ज्ञानी आत्माओं का है। तो ऐसी आत्माएं अब बहुत भटकेगी पर ब्राह्मणों में प्रवेश नहीं कर सकेगी, बाबा के बच्चों में प्रवेश नहीं हो सकेगी, परंतु वो दूर से वाइब्रेशन देंगी, उसके कारण मनोस्थिति चेंज होती रहेगी। अभी अभी ब्राह्मणपन का स्वरूप रहेगा, अभी अभी उनकी मन की स्थिति बदल जाएगी। तो ये मनोस्थिति को हिलाते रहेंगे, परंतु अगर मन मजबूत है, हमारा योग पावरफुल है, जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम याद नहीं करते हो, ज्ञान बड़ा सहज है, पर तुम कहते हो कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। तुम बेबी से भी बेबी हो, हाँ? याद का अभ्यास नहीं है। तो हमारी मंजिल बहुत ऊंची है। एक तो हमें देही अभिमानी बनना है। हम समझते हैं कि बाबा रोज रोज देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, ये सहज बात है, परंतु जैसे फिल्म डायरेक्टर एक्टर जब तक सही एक्शन न करे, फिर से ऐसा कहकर फिर प्रैक्टिस कराते, जब वो एक्यूरेट करते हैं तब शूटिंग कर लेते हैं। तो बाबा बार बार देही अभिमानी बनने की शिक्षा हमें देते हैं, तो इसको सहज नहीं समझना है। एक्यूरेट वो अभ्यास हमें करना है। जो पहला पाठ है वो ही बाबा कहता है लास्ट पाठ होगा। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बाबा बनाएगा, और उसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास चाहिए। अशरीरी बनो, हमें देही अभिमानी बनना है, और एक बाबा को याद करना। भक्ति में भी कहते हैं कि यमुना का कंठा हो, एक कृष्ण याद हो, तब प्राण तन से निकले। तो हमारी भी बाबा कहते हैं अंतमति सो गति, आज भी कहा, और अंतिम मति वो ही रहे, हमें और कुछ भी याद ना आए। जीवन भर जो याद करते हैं वो ही अंत में याद आएगा। एक शेठ की कहानी है कि शेठ अपनी अंतिम स्थिति पर आ गए, तो सभी तीनों बच्चे परिवार सहित उनके पास आ गए। शेठ पूछता है, बड़ा बच्चा कहाँ है, छोटा बच्चा कहाँ है, मझला बच्चा कहाँ है? तो उनको कहते हैं तीनों ही यहाँ है आपकी सेवा में। तो वो कहते तीनों ही यहाँ है तो दुकान कौन गया, हा? क्योंकि जीवन भर क्या याद किया था, दुकान धंधा। तो जीवन भर जो हम याद करेंगे वो ही अंत में याद आएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर बहुत काल हमारा साधारण स्थिति में जाएगा सेवा की बातें याद आएगी तो हमारी गति भी ऐसी ही होगी। हमें अपनी गति कैसी करनी है? सदगति करनी है। आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाएगी और जैसे संस्कार साथ आएंगे ऐसी हमारी गति होंगे। आप जानते हैं कि अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार जो भी आप साथ ले जाएंगे, क्यों किसी का जन्म चरित्रवान शाहूकार घर में होता है और क्यों किसी का जन्म चरित्रहीन गरीब परिवार में होता है। अभी इस जन्म के कर्म तो हुए नहीं पर पिछले जन्म के जो कर्म बार बार किए उससे जो संस्कार बने वो हम अपना साथ ले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं साकार मुरली में भी आता है कि अपनी जीवन कहानी सच्चाई से लिख के दो। अब तो हमारे में रॉन्ग राइट परखने की बुद्धि आ गई। अब हम इस जन्म में ज्ञान से पहले कैसे कर्म किए हैं वो तो परख सकते हैं ना। झूठ, चोरी, ठगी, दंभ या कोई लोभवश चोरी की हो या किसी से दिल लगाया हो, अब तो परख सकते हैं ना। ज्ञान की बुद्धि है तो इसके आधार से बाबा कहते हैं ना कि 3-4 साल की आयु से जो कुछ किया है वो याद रहता है। तो अपनी पूरी जीवन कहानी सच्चाई से बाबा को लिख के दो। अगर ऐसा कोई कर्म छिपाया, बाबा को नहीं बताया तो हमने अपना जीवन छिपाया, बाबा से झूठ बोला तो वो पाप बढ़ता रहेगा, बार बार भूलें होती रहेंगी, वो नुकसान होगा। इसलिए ये मौका मिला है आपको मधुबन में तपस्या करने का। बाबा के हर स्थान में तपस्या करने का। तो अपनी जीवन कहानी सच्चाई से लिखिए और बाबा के कमरे में बॉक्स में डालिए। ये आपको बाबा कहता है ना, आधा माफ हो जाएगा। वैसे कर्म कोई माफ नहीं होते हैं पर ये भगवान के आने पर ये स्पेशल गिफ्ट मिली है, ऑफर है। हाँ? अगर सच्चाई से लिख के देंगे तो बाबा आधा माफ कर देगा। तो यहां जब आप चार धाम करते हैं, झोपड़ी में भी बाबा का लेटर बॉक्स है, उसमें जीवन कहानी लिख के डाली है। ये मौका आप ले सकते हैं। ज्ञान में चलने के बाद भी कई विकर्म किए हैं, ज्ञान में आने के बाद कोई भी पाप करते हैं तो उसका 100 गुना दंड होता है। इसलिए ज्ञान से पहले के विकर्म और ज्ञान में आने के बाद किए हुए विकर्म सच्चाई से लिख कर बाबा को दे दो। ये पांडव भवन की भट्टी का विशेष लाभ लो और अब अशरीरी बनने का, देही अभिमानी बनने का, अपनी बिंदु रूप स्थिति का ये अंतिम पुरुषार्थ है। इसका हम दृढ़ता पूर्वक और लक्ष्य पूर्वक, समझ पूर्वक अभ्यास करें, इसको तपस्या कहते हैं। बाप समान इस दुनिया का, देह संबंधों का, दैहिक पदार्थों का और दैहिक संस्कारों का हमें त्याग करना है। तो यहां आप आए हैं, अपने आप को चेक करिए कि हमने ये सब कुछ त्याग किया है। वहां वो वातावरण नहीं मिलेगा, पर यहां आपको ये वातावरण मिलेगा। हर कण में बाबा की याद आती है, जिधर भी जाओ बाबा याद आता है, हर शय में बाबा की याद आती है। तो रहने का मौका तो वैसे नहीं मिलता है, पर ये भट्टी के निमित्त आपको मौका मिला है। तो यहां आप स्वदर्शन करिए कि बाप समान बने हैं, संपन्न बने हैं, संपूर्ण बने हैं। ये बाबा के सामने बैठकर बाबा के कमरे में अपने आप को चेक करिए। बाबा के हिस्ट्री हॉल में बाबा की जीवन कहानी देखिए, बाबा को कैसा एक धक से वैराग्य आया। बाबा ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, ऐसी वैराग्य वृत्ति जब आप में आएंगी तब त्याग सहज रीति होगा, और जब त्याग होगा आप में क्या क्या कमजोरियां हैं वो त्याग करना है, और तब तपस्या पावरफुल होगी। और तपस्या जब पावरफुल होगी तब संस्कार मिटेंगे। तो रियल भट्ठी अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर कड़ी तपस्या करो और विकारी संस्कार, व्यर्थ संस्कारों का नाश करो। तो ये है, अब तो अंतिम समय दिख रहा है ना? हाँ, अंतिम समय संगम के भी अंत में हम पहुंच गए हैं। तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ, अभी ही ये पुरुषार्थ करना है। बिंदु अपने बीती को लगा दो और अब मुझे कैसे निर्विकारी बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है और 16 कला संपूर्ण बनना है। आप लक्ष्य रखेंगे तो जरूर बन जाएंगे। ऐसा पावरफुल लक्ष्य रखो, ऐसी तपस्या करो तो इस भूमि में आप बन सकेंगे। ओम शांति।